अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत।
शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। आप लोग दोहराइए, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की, तो मेरे साथ प्रार्थना बोलेंगे सब लोग। प्रार्थना निकाल
कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है ये सभी नाशवान है। इस भौतिक संसार में जितने भी शरीर हैं ये सभी नाशवान है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये सब नाशवान है। नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, जबकि शरीर ही नित्य है। शरीर ही मतलब शरीर में रहने वाला जो जीव है वो नित्य है, एक है, और देह अनेक है। एक ही देही को यानी शरीर ही को अनेक प्रकार के देह मिलते हैं, और ये सब अंतवान है, सब अंतवान है। जितने देह मिले थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। प्रत्येक शरीर ही को इन जीवात्मा को देह जितने भी मिले हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं, तो ये देह भी नाशवान है। भगवान कह रहे हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य, तो तीन विशेषण जीवात्मा के लिए भगवान ने किए हैं। पहला तो नित्यस्य है, फिर अनाशिनः, फिर अप्रमेयस्य। नित्य है, अविनाशी है, और अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब है जिसको मापा नहीं जा सकता। अप्रमेय जो मायावादी है वो अप्रमेय का मतलब मानते हैं जिसको मापा नहीं जा सकता है, तो आत्मा को मानते सर्वव्यापक, सब जगह व्याप्त है आकाश की तरह। आत्मा को आकाश की तरह मानते हैं, सब जगह व्याप्त है, तो अप्रमेय का मतलब सोचते हैं कि इतना बड़ा है आत्मा कि इसको मापा नहीं जा सकता। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं अप्रमेय का मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा बहुत छोटा है। और इसके पहले भी प्रभुपाद ने बहुत व्याख्या की है कि जो जीवात्मा है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा कण है, चित कण, चेतना से युक्त एक कण है जीवात्मा, और बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप माप नहीं सकते ना। अनाशिनो प्रमेय से तस्मात युद्धस्य भारत, इसलिए भगवान कहते हैं कि हे भारत तुम युद्ध करो। अब तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या करें। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है, और 100 वर्ष बाद भी तत्क्षण भी नष्ट हो सकता है। तत्क्षण का मतलब क्या, उसी क्षण का मतलब क्या है, जीवात्मा कभी कभी जैसे ही गर्भाधान के समय माता के गर्भ में पहुंचता है, उसी समय ही अगर उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिला, तो किसके बच्चे से वातावरण नहीं मिला, तो वहां से वो चला जाता है ना। और आजकल गर्भ निरोध के लिए कई प्रकार की ऐसी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो जो भ्रूण है जीव है जाता है गर्भ के अंदर, तो उसको नष्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से शरीर तत्क्षण भी नष्ट हो सकता है ना। तो समय जब जीव जाता है गर्भाधान के समय, तो कलल के रूप में होता है, कीचड़, कीचड़ जैसा उसका शरीर होता है। कललम तेक रात्रेण, पहली रात में वो कलल होता है, रज और वीर का मिश्रण होता है ना। वो जीव है, है? और अगर उसको किसी प्रकार से अगर अनुकूल वातावरण नहीं मिला है ना, कंट्रासेप्टिव जो भी हो है ना, तो लोग करके और उसको नष्ट कर देते हैं, तो उस समय ही नष्ट हो सकता है, है? वो भी शरीर है। पंचरात्रेण बुद्बुदम, पांच रात में वही जो कीचड़ है वो एक बुलबुला बन जाता है, बुलबुले का आकार धारण कर लेता है, वही जो कीचड़ था कलल। तथा है न तो करकंधु, और दस दिन में वो जो है बेर के पेड़ के समान थोड़ा कठोर हो जाता है, बेर के फल के समान कठोर हो जाता है ना। पेशिंडम वा गधा परम, फिर 15 दिन में वो एक मांसपेशी बन जाता है ना। मासे तो सिरो, फिर एक महीने में उसका सिर बन जाता है। मासे तो सिरो द्वाभ्याम भावंग्र विग्रह, दो महीने में उसके हाथ और पैर बाहु अंग्री आदि अंग विग्रह, हाथ पैर आदि उसके अंग तैयार हो जाते हैं है ना। नखिलो मास्थी चरमानी, और फिर 3 महीने में उसके नाखून और रोम को और हड्डी और चमड़ी ये बन जाते हैं। नखिलो मास्थी चरमानी, इस तरह से भगवान कपिल ने वर्णन किया है कि कैसे गर्भ के अंदर जो शरीर है वो बढ़ता है या बनता है ना। और 6 महीने में उसकी जो है चेतना विकसित हो जाती है, उस समय वो बहुत तकलीफ का अनुभव करता है। 6 महीने में वो जो जीवात्मा है माता के जो भोजन की नली है उसके साथ में उसका जो उदर है नाभि है वो जुड़ी रहती है, और माता जो भोजन खाती है उसका जो रस है वो उस बच्चे के पेट में सीधे जाता है, पेट में नली होती है, वो मुंह से नहीं खाता है, पेट में सीधे उसके भोजन जाता है, भोजन का रस जाता है उसके पेट में। हाँ, और मातु जगध अन्न पानाद्य है, जो माता ने खाया पिया है उसी से ही उसका शरीर बड़ा होता है। उस समय माता को जो है बहुत कुछ इच्छा होती खाने की, चरपरा खट्टा ये सब चीजें माताएं खाती हैं है ना। तो वो नहीं सोचती हैं कि जब खट्टा चरपरा है ना तीखा ये चीजें वो खा रही हैं, तो उससे वो जो बच्चा है सर्वांगोत्थित वेदना, संपूर्ण शरीर में अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि वो बहुत ही सुकुमार शरीर होता है बच्चे का है ना। वैसे भी आप सोचिए कि आप तो मिर्चा खा लेते थोड़ा बहुत है ना, लेकिन बच्चा जरा भी मिर्चा नहीं खा सकता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही सुकुमार होता है। तो गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो बहुत सुकुमार होता है ना, तो उसके शरीर में बहुत पीड़ा होती है। माता जो खाती है खट्टा और चरपरा है ना, नमकीन, बहुत नमकीन, कसैला, तीखा, कलवा, तो इस तरह से वो जो है बहुत यातना भोगता है। और गर्भ के अंदर भी उस बच्चे की मृत्यु हो सकती है, कई कारणों से मृत्यु हो सकती है, है? जो माता है अगर बहुत सावधानी ना बरते हैं, और कभी अगर मान लीजिए कि गिर जाए, माता जी अगर मान लीजिए कि सीढ़ी उतरते हुए अगर वो गिर गई है ना, या कभी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी गर्भ के अंदर बच्चा मर जाता है। मतलब कहने का यह है कि जो शरीर है ये तत्क्षण भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, है? तो ये जो शरीर है हमारा ये बहुत ही खतरनाक चीज है, हम बहुत खतरे में है इस शरीर में, ये भौतिक शरीर है, है? तो अंतबंध इसको कहते हैं, अंतबंध अंतवान मतलब ये हमेशा मृत्यु के निकट है इस शरीर। जैसे प्रभुपाद जी थे तो वो देख रहे थे, सचमुच देख रहे थे, वो बिल्कुल मृत्यु के निकट थे प्रभुपाद जी, लेकिन फिर भी कृष्ण की शक्ति से उन्होंने ऐसा काम किया जो कि हजारों आदमी मिलकर के भी नहीं कर सकते, हजारों जवान आदमी मिलकर के भी जो काम नहीं कर सकते वो उन्होंने उस अवस्था में किया जब वो बिल्कुल मृत्यु के निकट थे, है ना। ये सब भगवान की शक्ति है, इस शरीर का नहीं है। इससे पता चलता है कि शरीर से वास्तव में कुछ काम नहीं होता है, जो काम होता है इस भौतिक संसार में अच्छा है महान तो वो भगवान के द्वारा होता है, है? ये प्रभुपाद जी के शरीर में कुछ था ही नहीं जब वो गए थे, उनके साथ कोई व्यक्ति भी नहीं था ना, जब वो गए थे अमेरिका उनके पास पैसा भी नहीं था। इससे पता चलता है कि ना तो पैसे से कुछ काम होता है, ना शरीर से काम होता है, और ना आदमियों से काम होता है, काम होता है भगवान से, है ना। अंतबंध, तो आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अंतबंध में देहा, इसे जितने देह हैं ये सभी अंतवान है, है? तस्मात युद्धस्व भारत, इसलिए हे भारत है तुम युद्ध करो। अब आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, समय की बात है। कोई व्यक्ति एक साल में मर जाता है, कोई व्यक्ति 5 साल तक जिंदा रहता है, कोई व्यक्ति 10 साल तक जिंदा रहता है मर जाता है, कोई व्यक्ति 20 साल तक और क्या कितने साल तक 50 साल में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के 60 साल में, किसी के 70 साल में, किसी के 80 साल में, ये कब तक बचेगा, क्योंकि देह है नाशवान है। आगे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, इससे शरीर जो है ना हमेशा नहीं रहेगा, है ना। जैसे कि लोमस ऋषि के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त होती है, ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त होती है तो उनके सीने का एक बाल गिर जाता है, है ना, सोचो एक बाल गिर जाता है, और जब उनके सीने के सब बाल गिर जाएंगे तब उनकी आयु समाप्त होगी। तो ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होती तो उनके सीने का एक बाल गिर जाता है, सोचो कितनी लंबी आयु है लोमस ऋषि की, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने भी अपने लिए कोई कुटिया नहीं बनाई, पानी बरस रहा है और वो चल रहे हैं, है? कोई छत्ता भी उन्होंने अपने सिर में नहीं रखा है, या हाँ छतरी एक छाता उन्होंने अपने सिर में रखा हुआ है और अपने बगल में मिक्सर में दबाए हुए चले जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा, कह रहे महाराज आप अपने लिए क्यों नहीं एक आश्रम बना लेते, कुटिया बना लेते, क्योंकि इतना पानी बरस रहा है और जो है आप तकलीफ भोग रहे हैं, आप अपने लिए एक घर मकान क्यों नहीं बना लेते अच्छा सा। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि अरे ये जीवन तो अनित्य है, सोचो इतनी बड़ी आयु उनकी तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि जीवन तो अनित्य है, क्या करेंगे मकान बना के, मरना तो है एक दिन, ये शरीर तो छूट जाएगा एक दिन। इतनी लंबी आयु जिस व्यक्ति की है वो कहता है कि मुझे मैं मकान क्यों बनाऊं, ये तो शरीर एक दिन छूटना है नष्ट हो जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि इतनी बड़ी जो आयु वाले लोग हैं वे भी समझते हैं, उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं देखो मेरी कितनी लंबी आयु है, अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है आप लोग जानते हैं, आप इसका हिसाब लगा सकते हैं ब्रह्मा जी की आयु का कैसे, ब्रह्मा जी का जो दिन है 12 घंटे का, ये 1000 चतुर्योगी का है, ठीक है, और एक चतुर्योगी 43,20,000 साल के बराबर है। 43,20,000 साल में 2 का गुणा करेंगे तो पूरा दिन आएगा, ठीक है ना, मतलब दिन रात, तो 2 का गुणा कर दीजिए पूरा दिन आ गया। उसमें 360 का गुणा करिए तो साल हो गया, फिर उसमें 100 का गुणा करिए तो 100 साल हो गया। तो ब्रह्मा जी की आयु इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, है ना, 43,20,000 में 1000 का गुणा करना, हाँ सॉरी, हाँ पहले 1000 का गुणा करेंगे ना, 43,20,000 साल तो एक चतुर्युगी है और 1000 चतुर्युगी है ना, तो 1000 का गुणा करो, 43,20,000 में पहले 1000 का गुणा करो, उसके बाद 2 का गुणा करो, है, और उसके बाद 360 का गुणा करो, उसके बाद 100 का गुणा करो, है ना, हाँ। तो ये जो है, ये जो संख्या है वो हमने एक बार निकाली थी, कितना होता है 21 ये आया था, कुछ याद आ रहा है मुझे, नील और 10 अरब 40 खरब, हाँ 31 नील, हाँ 31 नील, हाँ 31 नील और 10 अरब, हाँ 31 नील और 10 खरब और 40 अरब साल, इतना ब्रह्मा जी की आयु है। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब साल है ब्रह्मा जी की आयु है। तो ये देखो कि लोमस ऋषि की आयु कितनी लंबी है, ये 31 नील, 10 खरब, 40 अरब साल जब होते हैं तो उनका एक बाल झड़ता है, एक बाल गिरता है, कितनी लंबी आयु, तो भी वे क्या मानते हैं कि देह नाशवान है, इस देह के लिए हम क्यों घर बनाएं? और आजकल के आदमी, उनकी आयु कितनी छोटी होती है, 50 साल 60 साल, और इसी 50 साल 60 साल की आयु में वो 10-10 साल तक तो अपना मकान बना दे रहते हैं, 10 साल तक तो अपना मकान बना दे रहते हैं, और मकान भी पूरा नहीं होता है और वो मर जाते हैं, ये हाल है, है? जैसे कि प्रभुपाल लीलामृत में जब बंबई का मंदिर बन रहा था, है? तो श्रीमान नैयर वो बहुत पीछे पड़े थे जमीन को वापस लेने में, कि जमीन वापस लेना है, और पैसा भी जब्त कर लिया, है? प्रभुपाद का जो पैसा था वो भी जब्त कर लिया और जमीन भी वापस छीन रहे, है ना, और फिर कानूनी कार्यवाही भी जब चली तो कानूनी कार्यवाही भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच में उनको दिल का दौरा पड़ा और मर गए, जमीन वहीं की वहीं रही, है ना, दिल का दौरा पड़ा और मर गए, देखो कितने मूर्ख, है? और उसकी क्या इच्छा थी, उसने प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है हमारा पैसा वापस दे दो और आप ले लो जमीन वापस, कहता पैसा भी वापस नहीं दूंगा और अपने जमीन भी वापस लूंगा और पैसा भी वापस नहीं दूंगा, है ना, बहुत असुर था, बदमाश था, उसने क्या सोचा था कि ये शरीर उसका नित्य समझा उसने, है? उसको पता नहीं था कि अभी ही मौत का झटका लगने वाला है, है? और उसकी कितनी खराब भावना थी, वो कहता था कि जो भगवान के स्त्री विग्रह है जिनकी तुम लोग पूजा करते हो अपने हाथ से मैं गिराऊंगा, इतना दुष्ट है, अपने हाथ से वो स्त्री विग्रह को गिराना चाहता था। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम मंदिर हटा लेंगे और आप पैसा हमारा वापस कर दो, पैसा भी वापस नहीं करना चाहता और स्त्री विग्रह को गिराना चाहता था, कितना दुष्ट है, है? और अचानक ही क्या हुआ, है? वो खुद ही लुढ़क करके मर गया, खत्म हो गया, जमीन वहीं की वहीं रही, है? जमीन को कौन लेके जाएगा, ये जो जमीन है इसको कौन लेके जाएगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने शरीर को नित्य मान लेते हैं, इस कारण से वो जमीन के लिए और जायदाद के लिए झगड़ा करते रहते हैं। जिस मकान के लिए बहुत झगड़ा किया, लड़ाई मारपीट सब कुछ की, मकान हथिया लिया है, उसी मकान में एक दिन में वो सोते सोते मर जाता है, सोते सोते मर जाता है, है? और उस मकान से फिर उसका शरीर निकाल करके बाहर जलाया जाता है, जिस मकान के लिए उसने इतना झगड़ा किया है ना। तो ये हाल है। भगवद गीता बताती है, अंत बंते में देहा नित्यस्य उक्ता शरीर न, कि जीवात्मा अविनाशी है और ये जो देह है ये विनाशी है। इससे क्या पता चलता है कि हम देह के लिए हम इतना काम क्यों करें, इस शरीर के लिए। जब ये शरीर नाशवान है तो इस शरीर के लिए हम इतना काम क्यों करें। अब आजकल की जो शिक्षा है, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में जो भी शिक्षा आजकल दी जाती है वो शरीर की है, तो शरीर की है। आदमी पढ़ता लिखता है 20 साल 25 साल 30 साल तक पढ़ाई करते रहते लोग, किस लिए, कि भाई शरीर को सुख प्राप्त होगा, अच्छी प्रकार से खाएंगे सोएंगे। 40 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं और उसके बाद कोई नौकरी मिलती है, अच्छी नौकरी मिले या अच्छी नौकरी ना मिले कुछ पता नहीं। 40 साल तक वो पढ़ाई करते रहते हैं है? किस बात के लिए, कि भाई ये शरीर की अच्छी प्रकार से सेवा करेंगे। और शरीर का भी 40 साल बीत गए है? और जवानी भी उसकी चली गई, 40 साल के बाद जवानी चली गई है? अब उस शरीर को जो है वो सुख देना चाहता है और बुढ़ापा आ गया है? 10 साल चलता है, 20 साल चलता है, 30 साल चलता है और शरीर मर जाता है। लेकिन कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है आत्मा के लिए, तो भाई आत्मा के कैसे हम देखभाल करें, सुखी दें, आत्मा को कैसे सुख प्रदान करें, यह है अज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, ये सब क्या है, कसाई घर है। कसाई घर में क्या होता है, जीवन नष्ट किया जाता है, जीवन को नष्ट करते हैं, है कि नहीं। तो जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आदमी 10 साल 15 साल जो पढ़ाई करता है वो करता क्या है, 10 साल 15 साल अपने खत्म करता है, तो ये भी जीवन को क्या हुआ, नष्ट किया। क्योंकि आत्मा की कोई पढ़ाई नहीं करते, आत्मा को कैसे हम सुख पहुंचाएं इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती है महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में। हाँ, छोटे छोटे जो स्कूल हैं उनमें तो कुछ बच्चों को भगवान की बात सिखाई जाती है। हाँ, जैसे हमने भी कक्षा 3 में 4 में 5 में हमने कृष्ण का जन्म पढ़ा, अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है ना, तो कुछ गीता के श्लोक भी पढ़े कक्षा 6 में कक्षा 7 में कक्षा 8 में पाठ्य पुस्तक में भी गीता के कुछ श्लोक थे मिले है ना। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई और ये सब गीता भागवत ये सब भगवान की कथा बिल्कुल खत्म होती गई, तो क्या हुआ ये है ना, ये आप जो पढ़ाई है ये सब क्या हो गया, ये जीवन को बर्बाद करने वाली है, जीवन नष्ट कर दिया है ना। जैसे कसाई खाने में पशु का जीवन नष्ट किया जाता है ना, और ये जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय है इनमें मनुष्य का जीवन नष्ट किया जाता है। आप 20 साल पढ़ करके आए यूनिवर्सिटी में, 20 साल आप पढ़े तो आपने अपने जीवन के 20 साल नष्ट कर दिए, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं सीखा। ये पशु की आवश्यकता है, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना, बस यही आजकल की पढ़ाई का उद्देश्य केवल इतना ही है। तो इस तरह से जो है इस बात को अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो उसकी पढ़ाई हो गई है? तो उसकी फिर पढ़ाई पूरी हो जाती है संसार की, और फिर वो नई पढ़ाई शुरू करता है। इसलिए भगवद गीता की पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन का लक्ष्य नहीं बनता है किसी का। अभी शरीर अंतमान है ना, और तो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, 10 साल 20 साल तक पढ़ाई करी किस लिए, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपने 20 साल पढ़ाई की, लेकिन ये शरीर को आपने डॉक्टर बना लिया कितने साल के लिए, 10 साल 5 साल डॉक्टर बने और खत्म, शरीर तो खत्म हो जाएगा, और 20 साल आपने बर्बाद कर दिए इसी के लिए, इसी के चक्कर में। और शरीर छोड़ने के बाद कहाँ डॉक्टर रहे, कौन डॉक्टर रहता है शरीर छोड़ने के बाद, उसकी डिग्री विग्री सब खत्म, डॉक्टर की क्या फायदा है ना। लोगों के लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य ये बनाया हुआ है, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, ये उसके लिए पढ़ाई करता है 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाई करता रहता है। तो इसको नहीं समझ रहा है इस बात को कि देह अंतमान है, तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है कि बड़ा डॉक्टर बनना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, बड़ा साइंटिस्ट बनना है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। फिर जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा, कृष्ण की सेवा करना है। जीवन का लक्ष्य है साधु संग करना, जीवन का लक्ष्य है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, जीवन का लक्ष्य है भगवान की कथा श्रवण करना, ये जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि इस बात को नहीं समझते हैं लोग, इसलिए वहां कॉलेजों में जब आपस में लड़के लोग जो विद्यार्थी हैं एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, भाई आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्या है, तो कोई कहता है मेरी हॉबी हॉकी खेलना है, कोई कहता है मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, कोई कहता है मेरी हॉबी उपन्यास पढ़ना है, ये ऐसे लोगों के बीच में हम भी थे, तो हमें भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था ये हॉबी। लेकिन दिमाग में ये प्रश्न था कि हमें ये बताना पड़ रहा है कि भाई ये हॉबी है, लेकिन ये क्या है आखिर, ये शरीर जब खत्म हो जाएगा तो क्या रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मूर्खों के बीच में हमें भी मूर्खों की तरह बातें करनी पड़ती थी, जबकि शास्त्र पढ़े थे, लेकिन वहां पर अगर कुछ बात करें तो कहेंगे अरे ये क्या है, ये सब इतने धार्मिक बातें जो है ना तुम्हारे दिमाग में घुसी हैं, है ना। धार्मिक बातों को जो है वो लोग क्या मानते हैं, अरे ये तो सब पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, ये सब घिसी पिटी बातें नहीं समझते, आउटडेटेड आउटडेटेड बातें हैं ये, है ना। लेकिन यही नित्य नूतन है, नित्य नवीन इसी को है, अंतवंत में देहा, ये देह अंतवान है, नित्य शुभता शरीर में। जब देह अंतवान है तो हम देह की रक्षा के लिए हम इतना अपना समय क्यों बर्बाद करें, तो हम क्यों ना इस आत्मा की रक्षा के लिए अपना पूरा समय लगाएं, अपना पूरा जीवन लगाएं आत्मा की रक्षा के लिए। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में, उसका आप कोट बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो आदमी है वो मर रहा है डूब रहा, तो ये मूर्खता है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, वही जो हमने समझाया। अप्रमेय जो भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अप्रमेय का मतलब क्या है, इतना छोटा है कि आप नाप नहीं सकते, है ना। बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, बाल की नोक को भी आप नाप नहीं सकते, इतना छोटा है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो शरीर नष्ट होने वाला है तो वो तो नष्ट होगा ही, इसलिए युद्ध करने में क्या नुकसान है। अगर तुम किसी को मार रहे हो तो उसका जो शरीर है वो हमेशा तो रहना नहीं है, और जो आत्मा है उसको आप मार नहीं सकते कभी, इसलिए भगवान कहते हैं इसलिए तुम युद्ध करो। आगे पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कर्ण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। फिर भी प्रभु जी इस बात पर अभी जोर दे रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो, इसका यह मतलब नहीं है कि हम जहां चाहे तहां और जब चाहे तब युद्ध करना शुरू कर दें। इस श्लोक के बल पर है कोई किसी को भी आकर के मार दे और गला काट दे है? और कोई पूछे भाई तुमने क्यों इसको मारा, क्यों गला काटा, तो आप कहोगे हाँ गीता में लिखा है अंत वंत में देहा नित्यश्चुक्ता शरीर है, तो देह तो अंतवान है, इसलिए भगवान की दृष्टि युद्ध करो। तो ठीक है हम एक दूसरे को मारें और गला काटें एक दूसरे का, ये नहीं। इसलिए रूपा जी फिर हमें सावधान कर रहे हैं कि इस श्लोक का इस प्रकार का जो है गलत अर्थ नहीं निकालना। कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब पाप कर्म ना करो, किसी की भी हत्या पापपूर्ण हत्या मत करो। धर्म युद्ध है, भगवान जो कह रहे हैं तस्मात युद्ध सुभारत, इसलिए हे भरत वंशी तुम युद्ध करो। ये युद्ध कैसा युद्ध है? धर्म युद्ध, अधर्म युद्ध नहीं है। इसलिए व्यक्ति को धर्म युद्ध करना चाहिए। तस्मात युद्ध सुभारत है। आगे वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। अब देखिए कितना अच्छा प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, सूर्य के प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड का पोषण हो रहा है। जितनी भी शक्ति मिल रही है पूरे ब्रह्मांड में वो सूर्य के प्रकाश से मिल रही है। सूर्य के प्रकाश से ही शक्ति मिल रही है। सोचो जितनी भी शक्ति आ रही है वो सूर्य के प्रकाश से आ रही है। आप कहेंगे कि नहीं, ये जो बिजली बन रही है ये पानी की